ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஹம் சப்கே பியாரே பாப் தாதா, ஜ நே சார் கி ரச்சனா கே இத்தனா ஊச்சா ஜான் ஹம் சப் பச்சோ கோ தே ரே ஹே. ஹம் சபி பாபா கே பச்சே அப்படி சன்ஸ்காரோ கா திவ்யக்கரண கரத்தே ரத்தே ஹே. கை ஐசே சன்ஸ்கார ஹே ஜோ பத் சிப்பே ஹே அந்தர் ஹே. படே படே ஜோ கடே சன்ஸ்கார ஹே உன்கோ தோ ஏக தூசரே கே சம்பந்த சம்பர்க் மே ஆத்தே பதா சல்தா ஹே கி யே சன்ஸ்கார் ப்ராஹ்மண ஜீவன் மே உன்னதி கர்னே மே ருகாவட் டால்தா ஹே. ப்ராஹ்மண சோ ஃபரிஷ்தா சோ தேவதா ஜோ ஹம் சப் கா பஹுத் ஊஞ்சா லக்ஷ ஹே உஸ் லக்ஷ கோ ப்ராப்த கர்னே மே கௌன் கௌன் சே சன்ஸ்கார் பாதக் பன் ரஹே ஹே. ஜப் ஹம் ஏகாந்த மே பைட்தே ஹே அச்சே மாஹோல் மே ஆதே ஹே படோ கா அச்சே லோகோ கா சங் மில்தா ஹே தோ பதா சல்தா ஹே கி அபி தக் மேரே அந்தர் யே சன்ஸ்கார் ஹே ஜோ ஹமே உன்னதி கர்னே நஹீ தே ரஹா ஹே. ஆஜ் ஹம் ஐசே குச்ச சன்ஸ்கார் ஜின்ஹே ஹம் பரிவர்த்தன் கர்னா சாஹதே ஹே. விதியா பாபா கே த்வாரா ஹமே மில்தி ரஹதி ஹே. குச்ச ஐசி பாத்தே ஹே ஜோ பாபா முரளி கே அந்தர் பார் பார் சிகாத்தே சுனாத்தே பச்சே யே சன்ஸ்கார் டீக் நஹீ ஹே. கை ஐசி பாத்தே ஹே ஜோ பாபா கோ பசந்த ஹீ நஹீ ஆதி லேக்கின் பச்சோ கே வோ சன்ஸ்கார் பன் கே. சன்ஸ்கார் கைசே பனே வோ பி பாபா நே ஜான் தே கர்கே சமஜ் தே கர்கே பதா தியா கி பச்சே ஜோ ஆப்கே அந்தர் சங்கல்ப சலே போல் ஔர் கர்ம மே ஆயே ஔர் பார் பார் வோ கர்ம கர்னே லகே தோ கர்ம சன்ஸ்கார் கா ரூப் பன்தே கே. ஔர் ஜேசே சன்ஸ்கார் கடே ஹோத்தே கே ஃபிர் உன்னி சன்ஸ்காரோ கே ஆதார் சே சங்கல்ப சல்னா சுரு ஹோகா ஔர் உன்னி சங்கல்போ சே ஃபிர் வைசே ஹி கர்ம ஹோனே லகே. அப் சன்ஸ்காரோ கோ பரிவர்த்தன் கர்னா நயே சன்ஸ்கார் நயே சன்சார் கி ஸ்தாபனா கரேங்கே ஹம் சப் கோ உன் நயே சன்ஸ்காரோ கோ அப்னே அந்தர் இமர்ஜ் கர்னா ஔர் புரானே சன்ஸ்காரோ கோ கத்தம் கர்னே கி தபஸ்யா கர்னா உஸ்கோ சமாப்த கர்னே கே லியே கை பார் தோ பாபா கஹதே ஹே பஹுத் சக்திசாலி ஜுவாலாமுகி யோக கி ஆவஸ்யக்தா ஹே. லேக்கின் ஜுவாலாமுகி யோக சன்ஸ்கார் ஜின்கே கடே ஹே உன்கா லகேகா சோச்னே கி பாத் ஹே கி வோ சன்ஸ்கார் பார் பார் யோக மே ருகட் டாலதே ஹே. இஸ்லிய ஆஜ் சன்ஸ்கார் கா சன்ஸ்கார் கைசே கியா ஜாய குச்ச சோட்டி சோட்டி விதியா மே ஆப்கே சாம்னே ரக்கூங்கா. பஹலே யே தியான் தேனே கி ஜரூரத் ஹே கி சன்ஸ்கார் யா ஹம் ஏக் சப்த ஔர் கஹதே ஹே சுபாவ் சன்ஸ்கார். ஆதத்தே ஜோ பன் கயி ஜின்கோ ஹம் நேச்சர் கஹதே ஹே கஹான் சே பனி கைசே பனி. ஜிஸ் பரிவார் மே ஜிஸ் வாயுமண்டல் மே ஹமாரி பாலனா ஹுயி ஜஹா ஹமே ஜன்ம மிலா பாலனா ஹுயி ஃபிர் ஜிஸ் பிரகார் கா சங் மிலா சாஹே ஸ்டூடென்ட் லைஃப் மே மிலா யா கைசே பி கோயி சங் மில் கயா சங் கே ஆதார் சே பிரபாவித் ஹோகர் கே கர்ம ஹோனே லகே பரிவார் கே அனுசார் ஹம் சப் சல்னே லகே. ஔர் கை பார் ஐசே ஐசே கர்ம जो न चाहते हुए भी संघ के प्रभाव में हम करने लगे तो वो संस्कार बनते गए, और वो संस्कार चलते चलते ऐसे हो जाते हैं जो कितना भी प्रयास करते 10 साल 15 साल ज्ञान लेने के बाद फिर से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं हमने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, हम बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन जैसे कोई चीज छिपा करके रख दी जाए, अंदर दबा दी जाए, दबते दबते वो दब जाए, लेकिन कभी ऐसा वायुमंडल, ऐसा संग, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो दबा हुआ छिपा हुआ संस्कार बाहर आ जाता है। इसके लिए कई बार बाबा के बच्चे संस्कार एक बीज बन गया, और बीज को अगर भून दिया जाए, जला दिया जाए, तो फिर उसमें अंकुर नहीं निकले। लेकिन अगर ऐसे ही वो बीज को दबा दिया है, छिपा लिया है, कहीं रख दिया है, तो जब भी उसको वायुमंडल का, मिट्टी पानी का सहयोग मिलेगा तो फिर से उसमें अंकुर आ सकता है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें नया जन्म दिया, ब्राह्मण कुलभूषण जो हम कहते हैं, हम मर्जीवा ब्राह्मण हैं, पास्ट के संस्कार, पास्ट जीवन के हैं, उन संस्कारों के अधीन हमें नहीं होना है। बाबा हम सबको कहते हैं आपका जो ओरिजिनल संस्कार है, अनादि और आदि संस्कार है, वो बहुत शुद्ध और पवित्र संस्कार है। उन संस्कारों को अपने मूल संस्कार समझ करके उनका आवाहन करो, उनको अपने जीवन में धारण करो। बाकी ये जो मध्यकाल के संस्कार हैं वो ध्यान हुए हैं। जितना देहमान बढ़ता गया, बॉडी कॉन्शियस में आ गए, उतना नेगेटिव संस्कार अंदर प्रवेश होते गए। इस अंतिम जन्म में थोड़े समय में वो संस्कार परिवर्तन हो जाएं, संस्कार दिव्य बने, अलौकिक बने, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज्ञान सहज है, योग भी सहज है, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने इस पर विशेष ध्यान दिया, तो 10 साल 15 साल 20 साल ज्ञान लेने के बाद, योग करने के बाद संस्कार परिवर्तन नहीं होते, कभी कभी वो निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं। पहले हम ये देखें कौन कौन से संस्कार हमारे इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न डालते हैं, जो बाबा को पसंद नहीं आते। ब्राह्मण जीवन में बड़े संस्कारों का वर्णन मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ, छोटे छोटे संस्कार। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, आलस्य का एक ऐसा संस्कार, जब योग में बैठते हैं, जब मुरली सुनने बैठते हैं, तो ये माया अपना वार करती है, सुस्ती रूप में, आलस्य के रूप में एकाग्र होने नहीं देती। जागृत अवस्था में जो सुनना है, धारण करना, उसकी बजाय वो माया की सुस्ती की मुरली हमारी चलने लगती है, इसलिए आलस्य है। दूसरा बाबा कहते हैं अलबेलापन है, सभी एक दूसरे देखते हैं, कहते हैं बातें तो हर एक बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बने कौन हैं। कभी कभी बाबा के महावाक्यों में भी अपनी बातें मिक्स करके बाबा तो कहते हैं बच्चे पास तो 8 ही होंगे, 108 को भी थोड़ी बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा की मुरली से, बाबा की बातों को ही हम कभी आधार बना करके अपने को अलबेला कर लेते हैं। जो बाबा ने कहा है बच्चे रेस करो, एक दूसरे को न देखो, उसकी बजाय हम एक दूसरे को देखते हैं, वे कौन है, कहाँ बने हैं, और उन पर जब हमारा ध्यान जाता है तो अपने नेचुरल पुरुषार्थ के अंदर जो तीव्रता आनी चाहिए उसके बजाय हैं, ठीक हैं, बन जाएंगे, हो जाएगा, गे गे की भाषा आ जाती है, प्रयोग में आ जाती है, वलवेलापन है। कई चलते चलते देखो तो छोटी छोटी बातों में बहाना बना देते हैं। कारण कुछ भी हो, बाबा को कभी कारण शब्द और कोशिश शब्द अच्छा ही नहीं लगता। ये कारण था इसलिए ऐसा हुआ देंगे, बाबा इन शब्दों को बिल्कुल खारिज करता है कि बच्चे ये कौन से शब्द प्रयोग करते हो। कोशिश करेंगे, माना कुछ कुछ कमी है, कशिश है, तब कोशिश शब्द आपको कहने में आता है। कारण है, जब बाबा ने आप सबको हर बात का निवारण सिखाया है तो कारण कहां से आया। इसलिए बहानेबाजी की जो भाषा है, कोई भी पुरुषार्थ के मार्ग में, श्रेष्ठ कर्मों के उन्नति के मार्ग में रुकावट डालने वाले कल अगर रहे हैं तो वो कारण बहानेबाजी है। और बहानेबाजी के संस्कार चाहे सेवा में, चाहे अपने योग के या पढ़ाई की सब्जेक्ट में, अगर कोई बहाना देता है, उन्नति जहां है वहां बहाना देता है, माना उसके अंदर दृढ़ता की शक्ति की कमी है। लौकिक में एक संस्कार जो गलत माना जाता है, उसकी दूसरे शब्दों में ब्राह्मण जीवन में वो संस्कार बहुत सफलता दिलाता है। लौकिक जीवन में अगर कोई किसी बात में जिद करता है तो कहते बड़ा जिद्दी है, जो बात कहता है उसमें अड़ जाता है। वो जिद्द का स्वभाव आसुरी संस्कार माना जाता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं दृढ़ता की जरूरत है। दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए ये करना ही है, लेकिन जहां पर उन्नति की, श्रेष्ठ जीवन बनाने की बातें हैं उसमें दृढ़ता है। जहां पर कोई ऐसी बातें हैं जिसमें हमें परिवर्तन करना है, महसूस करना है, वहां पर जिद्द और सिद्ध करना वो आसुरी संस्कार कहलाता है। कई लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, मैं सच्चा हूं, मेरे विचार बिल्कुल राइट हैं, श्रीमत अनुसार हैं, लेकिन मान लो आप राइट भी हैं, कई बार बाबा कहते हैं आप बिल्कुल राइट हैं, लेकिन अगर संगठन में कोई बात ऐसी आती है, 10 लोगों का विचार नहीं है और आप अपने राइट बात पर अड़े हुए हो तो वो भी जिद्द कहलाता है। इसलिए उस संस्कार को वहां पर मोल्ड करना होता है, जहां संगठन है वहां हम हैं। भले लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन संगठन क्या कह रहा है, सबकी विचारधाराएं क्या हैं, अगर हम सच्चे भी हैं तो बाबा कहता बच्चे सच्चे हैं तो सभ्य भी हैं, नम्रता भी है सत्यता के साथ साथ। अड़ना नहीं है किसी चीज में, जिद्द नहीं करनी है, अपने आप को मोल्ड करने के संस्कार बना लो। टाइट होंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए मोल्ड हो जाना, अपने आप को चुप कर लेना, ये बाबा को पसंद आता है। जिद्द और सिद्ध करना ये आसुरी संस्कार कहलाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कई आत्माएं एक दूसरे की विशेषताओं पर, गुणों पर, सहयोग पर फट से प्रभावित हो जाती हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये भाई बहुत अच्छी है, बहन बहुत अच्छी, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, ये अच्छे लगते हैं। और बाबा कहते हैं ये अच्छाई जो है अगर किसी आत्मा की दिखाई देती है तो उस अच्छाई को भरने वाला कौन, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, न कि उस आत्मा के ऊपर आप प्रभावित हो जाएं। ये प्रभावित होना भी फंसना और फंसाना है। बहुत गहरी बात बाबा सुनाते हैं कि अगर हम किसी देहधारी आत्मा की तरफ, उसके स्नेह में, उसके सहयोग में, उसके अच्छे स्वभाव में, मिलनसार है, नम्रचित है, सहयोगी है, स्नेही है, उसकी विशेषताएं हैं आत्मा की, लेकिन उस आत्माओं की विशेषता में अगर हम फंस जाते, अटक जाते या वही अच्छा लगने लगता, तो बाबा कहता है यहां पर भी कुछ न कुछ अशुद्धि आ जाती है, कहीं न कहीं दैहिक आकर्षण बढ़ने लगती है और चलते चलते वो अच्छाई बुराई में परिवर्तन हो सकती है। इसलिए इसको बहुत अंडरलाइन करना, बाबा कहता है बच्चे किसी भी आत्मा की किसी भी विशेषता पर प्रभावित नहीं होना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, विशेषता देखो अपने में धारण करो, लेकिन ऐसा विशेष इस आत्मा ने कैसे इस विशेषता को पाया, किसने इसको ऐसा बनाया, तो जब ये भान रहता है तो बाबा की याद आती है कि बाबा आपने कैसे इस आत्मा को इतना श्रेष्ठ बना दिया, कितना महान बना दिया। तो बाबा की याद आए न कि वो आत्मा अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रभावित होने का संस्कार, आज मैं एक मुरली पढ़ रहा था उसमें बाबा ने कहा भावनाएं अच्छी होती हैं, भक्ति में भी भावना का भगवान को फल देना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में भी भावना वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, बाबा से अपना वर्षा प्राप्त कर लेते हैं, भावना से कहते हैं मेरा बाबा, बहुत दिल से कहते हैं, वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, बहुत सारी उनकी जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, पूरी हो जाती हैं, भावना के आधार से बाबा को अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं भावुक नहीं बनती, भावनाएं कई बार बहुत धोखा देती हैं और भावनाओं में कई आत्माएं फंस जाती हैं। आप सब जानते हैं वर्तमान समय जो माया का वार हो रहा है वो अधिकतर भावना वालों पर हो रहा है। भावना में समझते हैं ये जो भाई है, ये जो बहन है, बहुत बहुत अच्छी योगी आत्मा है, उसके पर ऐसी भावना बैठ जाती यही मेरे लिए बाबा है, यही मेरे लिए सब कुछ है, और ऐसी भावना में अगर हम आ गए तो भावना में आते भावुक आत्माएं कहीं ना कहीं धोखा खा लेती हैं, फंस जाती हैं। आप सब जानते हैं वर्तमान समय माया का रूप समय अनुसार बदलता रहता है, और इस समय जब से बाबा के पार्ट में परिवर्तन हुआ है, 48 साल तो बाबा के अवतरण को हमने सन्मुख देखा है, हम सब जानते हैं बाबा कैसे आए, कैसे बच्चों को पढ़ाया, कैसी पालना दी, लेकिन थोड़ा सा बाबा ने अपने इस पार्ट को रोका और चेंज किया तो कई स्थानों पर बाबा का रूप बन करके लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और भावना वाली आत्माएं विवेक का प्रयोग नहीं करती और वो समझती है ये आत्मा यहां से जो हमें पढ़ाई मिल रही, यहां से जो कह रहे हैं यही राइट है, और फिर धोखा ऐसा खाते हैं जो ब्राह्मण जीवन से विमुख हो जाते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को सिर्फ भावुक नहीं बनाता है, भावनाएं नहीं सिखाता है, भावनाएं होनी आवश्यक हैं, लेकिन विवेक युक्त भावनाएं चाहिए, ज्ञान युक्त भावनाएं चाहिए। सिर्फ भावनाएं भी एक संस्कार अच्छा नहीं है, अंधश्रद्धा में वो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा यानी तू आत्मा दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख करके कार्य करती है। केवल दिल के साथ भावनाओं के साथ विवेक को अगर नहीं उसने ध्यान दिया, बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान सागर बनकर के पढ़ाया है, विवेकवान बनाया है, बुद्धिवान बनाया है, इसलिए कोई बात सामने आती है तो सिर्फ भावना रख करके उस आत्मा की तरफ आकर्षित नहीं हो जाए। माया के बहुरूपों को पहचानना ज्ञान की वहां आवश्यकता पड़ती है, समझ चाहिए अंदर से क्या ये राइट हो सकता है। अगर नहीं समझ में आता है तो जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, उनसे थोड़ा पूछ लेना चाहिए। कई बार फंस जाते हैं, भटक जाते हैं और उसके बाद कहते हैं बहन जी आपको पता नहीं चलता लेकिन बाबा का पार्ट तो यही चल रहा है, और बाबा ऐसे कैसे बंद करेगा पार्ट, अभी तो बहुत सारी सेवाएं बाकी रह गई हैं। बहुत सारी माया इस रूप में आती है, इसलिए भावनाएं अंधश्रद्धा में परिवर्तित न हो जाएं, इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत है। ये संस्कार भी धोखा देता है, भटका देता है। ज्ञान युक्त विवेक युक्त भावना, एक बार हम लोगों की एक बहुत अच्छी दादियों ने, बड़ी दादी जब प्रकाशमय दादी थी, तो कहा अच्छा एक डिबेट करते हैं, शायद इसी मुरली के ऊपर कराई होगी, तो कहा बहनों को हम भावना बनाते हैं और भाइयों को विवेक बनाते हैं। डिबेट हुई, भावना वालों ने अपनी सिद्धि सिद्ध किया बातें कि नहीं, भावना के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है, भावना तो होनी चाहिए। विवेक वालों ने फिर अपनी बातें तर्क रखा। दादी जज थी, दादी ने कहा नहीं, दोनों में से अगर एक है किसी के पास अगर सिर्फ विवेक यूज करता है तो उसको अहंकार आएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सोच समझ के करता हूँ, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मैं राइट हूँ। विवेकवान कहीं न कहीं धोखा खाएगा, अहम अहंकार में आएगा, अपना नाम और मान शान के पीछे लगा रहेगा, इसलिए होनी चाहिए। फिर भावना वाले जैसा बताया कि भावना में कई लोग कहीं न कहीं धोखा खाते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए बाबा ने बैलेंस की बात कही है, दिल और दिमाग का, भावना और विवेक का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। करो ज्ञान का, सिर्फ बाबा बाबा कहने से भी उद्धार नहीं होगा, लेकिन वह कौन है, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, क्या समान रूप में बाबा के साथ मिलन होता है या बहुत ऊंचा है और मैं नीचा हूँ। भावना वाले क्या सोचेंगे, तो बहुत ऊंचा है, मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है, और विवेक वाले समझते हैं बाबा ने तो अपने समान हमें बनाया है, हम उसके समान स्थित होकर के समानता के आधार से उनके गुणों को उनकी शक्तियों को हम धारण करते हैं, अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अनुभव कर लेते हैं। तो इसलिए दोनों संस्कार, विवेक वाले अहम में आ जाते हैं और भावना वाले कहीं न कहीं अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं, ये दोनों संस्कार ब्राह्मण जीवन में बहुत नुकसान है। इसलिए बैलेंस से चलना, बैलेंस एक बहुत बड़ा है, जहां पर भी अतीत होती है वहां नुकसान होता है, इस संस्कार को हमें चेक करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म संस्कार है। अहम और बहम का संस्कार, कई बार ऐसा बहम हो जाता है अपने आप से ही, पता नहीं मेरे तो कड़े संस्कार हैं, मैं तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना योग करने के बाद, मेरे अंदर वही स्वप्न चलते हैं, वही संकल्प चलते हैं, मैं देवता बना था या नहीं बना था, बनूंगा या नहीं बनूंगा, इस प्रकार के संस्कार है, वो बहम के संस्कार हैं। जब बाबा की नजर ही, बाबा ने अपना बच्चा बनाया, जरूर बाबा ने कोई तो विशेषता देखी। बाबा कहता है मैं बच्चों के तीनों कालों को जानता हूँ, भले आज ये बच्चा कहीं युद्ध कर रहा है, कहीं कोई हिसाब किताब है, कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन कल इस बच्चे ने विजय प्राप्त की है। बाबा की जब हमारे ऊपर उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, तो हम कभी भी किसी भी पेपर में निराश और उदास न हो। ये निराशा का संस्कार, बहम का संस्कार कई बार बहुत धोखा देता है। इस संस्कार को भी हमें बहुत महसूस करने की जरूरत है। कोई भी संस्कार को इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने सुना होगा इतने भी परिवर्तन हुए हैं, संस्कार जिन्होंने अपने चेंज कर पाए, चाहे तो कहानी आती है, चाहे वाल्मीकि की कहानी आती है, चाहे जितने भी हमारे संत महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन में जो अचानक परिवर्तन आया है, संस्कारों में परिवर्तन आया। पहले जो संस्कार थे उनके, जब तक उनको रियलाइज नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, तब तक उन संस्कारों में नेचुरल चल रहे थे, लेकिन जिस दिन उनको ठक से लग गया कि गलत है, उस दिन से उन्होंने तपस्या की, दृढ़ता का संकल्प किया, और उस दृढ़ता के आधार से चेंज करके एक महान पद को, महान पोजीशन प्राप्त कर लिया। आज वाल्मीकि का कहानी क्या है, एक डाकू मारपीट करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने वाला, अपने परिवार की पालना करता था, कितने सारे गलत कार्य किए, लेकिन संतों का ये झुंड जब उसको लूटने गया, तब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, काम अपने परिवार के लिए करते हैं। अच्छा, इसका दुख दिया, किसी को मारा, उसका जो आपको परिणाम मिलेगा, उस परिणाम में वो सब भागी होंगे, सहयोगी होंगे, पूछा है कभी, कहता नहीं, पूछ के रहो। जब उसने अपने परिवार वालों से पूछा कि मैं ऐसे ऐसे मार पीट करके, ऐसे डाका डाल के, ऐसे लोगों को दुखी करके पैसा लाता हूँ, आपकी पालना करता हूँ, क्या इसमें आप सहयोगी बनेंगे, अगर मान लो इसका कोई हमको पाप की सजा मिलेगी तो तुमने कहा ये हमने तो आपको नहीं कहा कि ऐसा पैसा लाके आओ लेके आओ, हम क्यों सहयोगी बनेंगे। अब उस आत्मा को ये महसूस हो गया, वहां पर उसको समझ दी, समझ के बाद उसने महसूस किया अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूं। फिर आकर के पूछता अभी मुझे करना क्या है, कैसे मेरा एक डकैती का या मारपीट का संस्कार चेंज होगा। तो उन्होंने कहा तुम तपस्या करो, और उस तपस्या में फिर उसने इतनी मेहनत की जो दिखाते हैं कि उसके चारों ओर दीमक ने अपने घर बना लिए, छोटे छोटे बॉल जैसे घर बना लिए मिट्टी के। तब भगवान उस पर प्रसन्न हुए और कहने लगे मांग तुमको क्या वरदान चाहिए। उस मेहनत से उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उसको भगवान के द्वारा वो दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया, वो वाल्मीकि बन करके इतनी सुंदर रामायण की रचना कर डाली। परिवर्तन हो गया, सहन किया, तपस्या की, पहले महसूस किया, समझ मिली। तो हम भी अपने संस्कारों को जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं वो समझ देती है, केवल समझ है वो, लेकिन समझ के बाद महसूस किया है कि ये गलत मेरा संस्कार है, मेरे से किसी को दुख हो रहा है, परेशान हो रहा है, कोई को कोई नुकसान पहुंच रहा है, उसका योग टूट रहा है, उसकी स्थिति बिगड़ रही है, हम समझते नहीं नहीं मेरा कोई संस्कार नहीं है, मैं थोड़ी दे रहा हूं, ये अपने आप दुखी हो रहा है, उसकी आदत है परेशान होने की। लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी बातें, चाहे वो ईर्ष्या के रूप में है, चाहे आवेश के रूप में है, चिड़चिड़ेपन के रूप में है, जोश में बोल देते हैं। एक बार बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई कि बच्चे ये जो माइक है ना इसको तो कंट्रोल किया जा सकता है इसकी आवाज को, लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा मैं क्या करूं मेरी आवाज ही ऐसी है। अब साइंस ने उसको कंट्रोल करने के लिए यंत्र बना लिया, साइलेंस वाले कहते हैं मैं क्या करूं मेरी आवाज ही ऐसी है, क्या इस आवाज को सरल मधुर नहीं बनाया जा सकता है, क्या जोश में बोल करके ही काम लिया जा सकता है। विचार करना, इस संस्कार को मैंने बहुत मेहनत से जीत पाया, मुझे भी कई बार बड़ा चिड़चिड़ापन आता था क्योंकि सेवाएं ऐसी अचानक कोई काम आ जाते चिड़चिड़ापन आ जाता, बहुत ज्यादा सब सेवाएं आ जाती, कभी नींद फिटानी पड़े, कभी भोजन छोड़ना पड़े, कोई सेवा का और कुछ हमारा कार्य है उसके बीच में सेवा आ जाए, तो नेचुरल है जब अधिक सेवाएं होती व्यक्ति के पास तो चिड़चिड़ापन आता है, वो कुछ न कुछ उल्टा बोल देगा, कुछ न कुछ जोश में नहीं बोलेगा तो अंदर अंदर चिढ़ जाएगा, जवाब ठीक नहीं देगा, मूड खराब कर लेगा, रूस जाएगा, बात नहीं करेगा, कहीं आपस में बात नहीं करते हैं, इतना समय से साथ रहते हैं छोटी सी बात को इतना फील कर लेते हैं। ये बाबा कहते हैं इसको तो फ्लू की बीमारी हो गई। अब इस संस्कार को कोई गलत नहीं समझता, समझता इसने मेरे को ऐसे कहा ना इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, अब मूडी कैसे होंगे। अब बाबा को ये सब संस्कार अच्छे नहीं लगते, मूड हमारी बिगड़ जाए, छोटी छोटी बातों में हम रूठ जाएं, बात नहीं करें, किनारा कर लें, सेवाएं उसके बीच में रुकावट डाल दें, कहेंगे मेरे को आज सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये है, तो बाबा कहता इसके लिए तो कोई थर्मामीटर है ही नहीं, किसको ही कह दे मेरे पेट में दर्द है, खराब हुआ है मूड, खराब हुई अंदर की स्थिति, और कहता मेरे पेट में दर्द है, सेवाएं छोड़ करके सो जाता है जाकर के। ऐसी जो आदतें हैं बहुत सूक्ष्म हैं, और इन आदतों को परिवर्तन करना, देवता बनने वाली आत्माएं हैं, दिव्य संस्कार बन जाएं, ऐसे संस्कार दिव्यीकरण इनका हो, इसके लिए हम सबको कुछ तो एकांतवास करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जल्दी सो छूटेंगे, मुरली सुन लो, क्लासेस सुन लो, कुछ नहीं होगा। दीदी मुझे कहती थी, दीदी मनमोहिनी हम लोगों को क्लास जब कराती थी कहती थी अगर तुम अपने संस्कारों को चेंज करना चाहते हो तो अपने टीचर खुद बनो, दूसरा कुछ टीच करेगा आपका परिवर्तन नहीं होगा, अपने आप से बातें करो, अपने आप से अंदर अंदर पढ़ाओ अपने को, क्या ये संस्कार मैं छोड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, जो मुझे धोखा दे रहा है, जो मुझे योग में बहुत रुकावट डालता है। मान लो आज किसी का मूड खराब हो गया, कोई ने किसी को ऐसे शब्द बोल दिए, बैठ जाओ योग में 5 घंटा 4 घंटा लगेगा योग, बार बार वही संकल्प मैंने ऐसे बोल दिया, वो बेचारा दुखी हो गया, उसका मूड खराब हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बोल तो दिया एक बार, तो उसके बाद पश्चाताप हो रहा है। ज्ञानी आत्माएं, बाबा उनको कहता है ज्ञानी, माना सोच समझ कर करने वाला। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, सोचने के पहले भी सोचो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। ट्रक के पीछे लोग लिखते हैं, हम सब जो संकल्प चला रहे हैं, जो सोच रहे हैं, क्या उसमें मेरी या अन्य आत्माओं की उन्नति है, या ऐसे ही संकल्प चल रहे हैं। कईयों के संकल्प इतने फास्ट चलते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ी जो बीमारी है ना इस समय, वो अधिक सोचने की है। सोचता रहता है, कोई मतलब नहीं है, चल रहे हैं विचार, ये बात, एक पूरी होती दो और आ जाती, अब इतना भारी, इतना उलझ जाता है। कहो भाई एक मिनट में थोड़ा ब्रेक लगाओ, ब्रेक क्या है, हमारी संकल्पों की ब्रेक है ना, चलते रहे संकल्प, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें ब्रेक दी है, संकल्पों को ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, फिर सोच समझ करके बोलो, वैसे कहते हैं तौल करके बोलो। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो मेरे मुख से निकल रहा है, इसकी रिजल्ट क्या होगी, सामने वाली आत्मा इसको किस तरह से यूज करेगी, कहीं उसके दिल को दर्द तो नहीं बोल पहुंचा देगा, उसकी ऊंची स्थिति गिर तो नहीं जाएगी। इसलिए ज्ञानी तो वही है जो सोचने के पहले, बोलने के पहले, करने के पहले एक सेकंड साइलेंस में जा करके अपने आप को कंट्रोल करके फिर करता है, फिर वो संस्कार नहीं बनेगा। नहीं तो हो गया, कर लिया और बार बार कर लिया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो संस्कार कड़ा रूप लेता जाएगा और उसको बदलना बहुत मेहनत का काम है। इसलिए कोई ऐसे नेगेटिव संस्कार छिपाने के, बोलने के, चोरी करने के, झूठ बोलने के, कई ऐसे संस्कार हैं। और जो बताया ना संग से, जिस परिवार में पले हैं, बचपन में रहे हैं, कोई अच्छे घराने के रायल बच्चे होते हैं, रायल घराने अभी राजा ही नहीं है लेकिन घर तो हैं, उन घराने में आने वाले बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, आप उनको कोई भी चीज दे दो, उनके सामने कोई भी अच्छे से अच्छी चीज रख लो, हाथ नहीं लगाएंगे, उठाएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, रॉयल्टी है संस्कारों में, वो रॉयल्टी है। और बाबा जब इस मिसाल को हमारे आगे रखते हैं तो कहते हैं देखो, रॉयल घराने के बच्चे किसी चीज को, किसी बात पर आकर्षित नहीं होते, किसी की चीज उठाते नहीं है, छिपाते नहीं है, और आप तो कहते हो मैं देवता बनने वाला हूं, मैं तो ऐसे रॉयल देवी देवताने की आत्मा हूं, और छोटी छोटी कमी कमजोरी इसकी देखी उसकी देखी तुम धारण कर लेते हो, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। क्योंकि रॉयल आत्माएं किसी की भी छोड़ने वाली चीज को अपने में धारण नहीं कर सकते, वो छोड़ रहा है और हम धारण कर रहे हैं, कहां रॉयल्टी है। अब वस्तुओं के पीछे भी इसके पास ये है, मेरे पास भी हो, तो सेंटर है, मेरा भी ऐसा हो, भेंट करते एक दूसरे से, रीस करते हैं, करनी है रेस और कर रहे हैं रीस, ये संस्कार जो है कहां तक राइट है, करना चाहिए कि मान लो ऐसे संस्कार हैं, मांगने के हैं, रीस रेस के हैं, ईर्ष्या के हैं, नफरत के हैं, घृणा के हैं, वैर बदला लेने की भावनाएं हैं, एक ने कोई कुछ कह दिया तो लिया, उसे चुप तो हो गया, लेकिन अंदर अंदर कैसे इसको मैं गिराऊं, कैसे इसकी बात को फैला दूं, कभी कोई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। संगठन है बाबा के बच्चे, कोई आगे बढ़ रहा है तो कैसे भी करके इसको खींच लो पीछे, कितना रुकावट, कितने विघ्न आते हैं, चेक करना है। संस्कार ही है जो अशुद्ध है, जो हम दूसरों के आगे बढ़ने में भी खुश नहीं हो रहे हैं, जलन पैदा होती है, कहीं इसकी महिमा ना हो, इसका नाम ना हो जाए, ये ना हो जाए, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले चुकी हैं। हम सब बाबा के बच्चों को इन संस्कारों का संस्कार करना है, चेक करो पहले, सुनो, ऐसे नहीं योग में बैठे बाबा बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं हूं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अगर योग में एकाग्रता है और एकाग्रता के साथ ये महसूसता है कि इस संस्कार को मैं चित रखूंगा। ये संस्कार मुझे धोखा दे रहा है, ये संस्कार मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने दे रहा है, ये संस्कार मुझे यूं में विघ्न डाल रहा है। पता तो सबको चलता है, ऐसा तो कोई जिसको पता ही नहीं चलता हो कि संस्कार है मेरा। कईयों को ऐसा बोलने का संस्कार है, कटाक्ष करने का संस्कार है, तुरंत कमेंट करने का संस्कार है। मैं कहता हूं अगर इसकी लिस्ट निकाली जाए, दादी जी ने एक बार हम लोग से पूछवाई थी, निकालो लिस्ट कि अशुद्ध संस्कार कौन कौन से हैं, जिन संस्कारों का मुझे संस्कार करना है। पता तो हो ये अशुद्ध है, ये ठीक नहीं है। आप सब इस पर ध्यान देना, हम इस ब्राह्मण जीवन में अगर फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य ले रहे हैं, इस संसार को हम बदलने की चैलेंज कर रहे हैं, तो संसार बिना संस्कारों के परिवर्तन से होगा। हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम कहां तक बदले हैं बाबा का वचन के बाद? क्या इन संस्कारों को हमने जड़ से समाप्त किया? ये सब देहमान से पैदा हुए, आत्मा के अंदर कोई संस्कार नहीं। आत्मा का संस्कार तो दिव्यता है, पवित्रता है, स्नेह है, प्रेम है, आनंद है। आत्मा के साथ गुण है जी, वो संस्कार है उसके। लेकिन वो संस्कार ईश्वरीय संस्कार दबा करके हम आसुरी संस्कारों का फोड़ सा अनुभव कर हर बार इमर्ज हो जाते हैं। जब हम योग अभ्यास करते हैं, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा से शक्ति लेते हैं, तो बाबा की शक्ति वो किरणें अगर करेंगे उसमें लिए, तो ये संस्कार चेंज हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे को ज्वालामुखी योग बना दो। माना ज्वालामुखी, ऐसे ज्वाला जलने लगेगी क्या? ये लगन की अग्नि है, ये बहुत प्यार की आग है। बाबा के प्यार छोड़ देना ये सब, इसको अग्नि कहा जाता है। बाबा कहता है जिससे प्यार हो जाता है ना, लोग अपना गला काटने के लिए तैयार हो जाते, मरने के तैयार हो जाते। अगर बाबा से मेरा सच्चा प्यार है, तो बाबा को जो बातें अच्छी नहीं लगती वो मुझे नहीं करनी है। बस ये संकल्प तपस्या है। जिन्हें दृढ़ता संपन्न संकल्प कर लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए इस संस्कार को मुझे गलाना है, एकदम एकाग्र चित्त ऐसे शक्तिशाली आ रही हैं और वो क्यों उस संस्कार को गला रही हैं, जला रही हैं। संस्कार परिवर्तन हो रहा है। कल जो था आज वो नहीं रहेगा। अगर कल था आज भी है और बढ़ते बढ़ते और बढ़ता जा रहा है, तो ज्ञान और योग की शक्ति क्या है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छी तरह से एकांतवास करके महसूस करके पहले अपनी शक्ति करनी है। सिर्फ एकाग्र भी ऐसे नहीं हो जाओ शांत होके बैठ जाओ। कोई चीज को परिवर्तन करने के लिए महसूस करना जरूरी है। मेरे बोल से इस आत्मा को दुख हुआ, मुझे आज फीलिंग आ गई, आज मैं रूठ गया, आज मेरा मूड खराब हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया। कई बातें होती हैं, जहां संगठन है, जहां सेवाएं हैं, ये सब बातें चलती हैं। लेकिन ये मुझ ब्राह्मण आत्मा के लिए रुकावट है, मुझे इसे चेंज करना है। महसूस करें, एकांत में अपने से बातें करें। उस संस्कार को आप विशेष करके जब ऐसी बात आती है तो लिखो, ये संस्कार मैं आज से छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए इसके लिए मुझे कितना भी घंटे तपस्या करनी पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, मैं चेंज करके रहूंगा। लोग कई दिन का व्रत ले लेते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक ये संस्कार गलेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। बाबा ठीक नहीं सिखाता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे दृढ़ता का संकल्प करो, बाबा की शक्तियों को एकाग्र कर लो अपने ऊपर, और एकाग्र होकर के उस संस्कार के ऊपर डालो, ऐसे ये खत्म हो जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जब योग ज्वाला रूप हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, स्थिर और एकाग्र हो जाता है, तो धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाता है। तो हमारे संस्कार में कहां तक दिव्यता आई है? क्या आवेग, चेक करना शब्दों को मैं ले रहा हूं, आवेग, और एक है आवेश। वेग जब आता अंदर का, जिसको बाबा माया का तूफान वेग रफ्तार में आता अंदर से, फिर भूल जाता है ये ब्राह्मण है, ये पवित्रता का व्रत लेने वाली पवित्र आत्माएं हैं, मुझे ऐसे वेग में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। जो इंद्रियों में उत्तेजना आती है बहुत पाप कराती है। अगर व्यक्ति ने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, वेग में आ गया, आवेग में आ गया, तो बहुत पाप हो रहे हैं, पाप होते हैं अंदर से आत्मा से। इसलिए एकांत में बैठ करके अपने आप को बड़ा शीतल योगी बनाने की जरूरत है। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, अंग अंग सुगंधित हैं, कभी भी उत्तेजना ना आए, आवेग ना आए। जब आवेग पर कंट्रोल हो जाएगा तब हम इस महाविकार महाशत्रु जी, नहीं तो काम विकार कई जगह पर बहुत धोखा देता है। अचानक वो संस्कार इमर्ज हो जाता है और इमर्ज होकर के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कई पाप हो जाते हैं, फिर पश्चाताप, केवल पश्चाताप है। एक मिनट दो मिनट के उत्तेजना आवेग, अब इस संस्कार को गलाना है मुझे। बार बार अभ्यास करो, मैं तो पवित्रता की देवी, पवित्रता का देव, बाबा ने मुझे पवित्रता का वरदान दिया है, इस ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है। इस नेगेटिव संस्कार को जो आधा कल्प का बना हुआ है, पक्का हो गया है, इस संस्कार को मुझे समाप्त करना है। करो तपस्या इसके लिए। आवेग वाला संस्कार तो कभी कभी हम इस पर जीत प्राप्त कर लेते, फिर आवेश तुरंत गुस्से में, कई 10 साल 15 साल 20 साल से ज्ञान में चलते लेकिन कुवचन मुख से बार बार निकल जाते हैं, ऐसे वचन बोल देते हैं जो बेचारे को क्या बताएं आप। जितने हमारे पास कंप्लेन के पत्र आते हैं ना, दादी के पास आते हैं, मुझे पढ़ने पड़ते हैं, केवल आवेग के कारण, आवेश के कारण आते हैं। आवेश में आकर के छोटे बड़े की भी परवाह नहीं करते और बोल देते हैं, कि इतने टकराव पैदा हो जाते हैं, एक बोल कितना नुकसान कर देता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, संबंध बिखर जाते हैं, सेवाओं में कितने रुकावट और विघ्न आते हैं वो आप सब जानते हैं, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए आवेश वाले शब्द मेरे मुख से ना निकले, कंट्रोल करो। ये साइंस की शक्ति ने इसको कंट्रोल किया, साइलेंस की शक्ति से हम अपने बोल को कंट्रोल कर लें। दो दिन पहले बाबा क्या कह रहे थे, अच्छा बच्चे मुख की ताली बजती है, एक गुस्से में बोलता है दूसरा चुप हो जाए, वो मुख की ताली बंद हो जाएगी। एक ने बजाई, दूसरे ने और जोर से बजा दी, भूत आया एक में, दूसरा भूत खड़ा होकर के टकरा गया उसे। इसलिए क्या कहता है, भूत अगर किसी में आता है तो तुम किनारा कर लो, उस समय चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप वो शांत हो जाएगा। इसलिए इस आवेश को चेक करना, जब अंदर से आ जाता ना, कोई की परवाह नहीं करता व्यक्ति, जो आया बोल देता, भले उसको कहीं भी चोट लगे जा करके, वो तीर से भी ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए हम सबको इस बात को अंडरलाइन करना है, मैं ब्राह्मण आत्मा, देवता बनने वाली आत्मा, किसी को भी इस प्रकार के बोल बोल करके दुखी न करूं, इससे बद्दुआएं निकलती हैं। और सबसे बड़े ब्राह्मण जीवन में जो विघ्न है वो बद्दुआओं का विघ्न है। मैं अपने आप में ध्यान रखता हूं दो बातों का, बाबा मैं आपका बच्चा बना हूं, मुझे आपकी दुआएं मिले, बस परमात्मा की दुआएं ले लो, कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, उसकी आशीर्वाद है, उसकी दुआएं हैं। लेकिन केवल एक लक्ष्य से दुआएं मिली, मैं आपकी श्रीमत में जरा भी मन मत ऐड नहीं करूंगा, जरा भी परमत के प्रभाव में नहीं आऊंगा। श्रीमत सिर माथे, और श्रीमत मुरली में है, कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो बात आपके अंदर प्रश्न में आए, मुरली उठा लो, उसी दिन की मुरली में उसका उत्तर होगा। क्या जादूगर है बाबा, मैं नहीं जानता, मुझे कोई कहते आज की मुरली आपने कैसे निकाली, कहां से निकाली, दो दिन पहले मुरली चली ना बाबा की, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर, फिर बहुत सारे फोन आए चारों तरफ से, कहां से भाई साहब निकल, वो तो अपने नंबर में आई है। लेकिन बाबा की मुरली चमत्कार करती है, जादू मंत्र का काम करती है। अगर कोई ऐसा संस्कार है, ऐसे प्रश्न आपके अंदर आ रहे हैं, इसको हम कैसे जीतें, बाबा की मुरली उठा लो, श्रीमत क्या कहती है आपको पता चल जाएगा, उसी दिन की मुरली में उत्तर मिल जाएगा। और उस श्रीमत पर कुछ भी हो जाए मुझे चलना है, कितनी भी रुकावटें आए श्रीमत में कभी भी मन मत तैर नहीं करना। कल मैं अपने क्लास में कह रहा था, मम्मा ने जो नंबर 1 लिया, बाबा कई बार कहते थे देखो ये बच्ची मेरे से भी आगे चली गई, साकार में ब्रह्मा बाबा कहते थे, मम्मा जल्दी संपूर्ण बनी, तो बाबा कहते देखो इस बच्ची ने मेरे से भी आगे नंबर ले लिया, किस आधार से लिया। कुछ भी बाबा ने कहा, कभी भी ये नहीं कहा ये बाबा ने क्यों कहा। एक बार की बात है, दादियां सुनाती हैं, कोई बाबा ने कोई ऐसी मुरली चलाई तो मम्मा के पास गई, पूछने लगी मम्मा आज ये बाबा ने जो कहा आपका इस पर क्या विचार है। मम्मा ने उनको आंख दिखाई, क्या बोलते हो, बाबा ने कहा और मेरा विचार, मेरा विचार कहां से आया, बाबा कह रहा है। माना बाबा के एक वाक्य में भी उन्होंने ये नहीं कहा मेरा विचार ऐसा है, बाबा का विचार है, बाबा ने कहा है। बाबा ने अगर कह दिया बच्ची रात है दिन में, तो बाबा ने, मम्मा ने कहा हाँ बाबा उसमें भी कुछ राज होगा, उसमें भी कुछ कल्याण होगा। मम्मा ने कभी भी बाबा के एक भी वाक्य में अपना प्रश्न उठाया बाबा ने ऐसा क्यों कहा है। सत्य वचन महाराज, ये भगवान बोल रहा है, भगवान के महावाक्य हैं, इंसान के नहीं है। उस निश्चय के आधार से मम्मा ने बाबा के एक एक महावाक्य को सिर माथे लिया और नंबर 1 बन गई। हम सभी भी बाबा की मुरली को कभी भी उसमें मन मत परमत ऐड करने की बजाय, जो बाबा कह रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है, किस लिए कहा है क्यों बाबा जाने, मैं क्यों प्रश्न करूं। तो अगर परमात्मा दुआएं मुझ आत्मा को मिल रही हैं, श्रीमत अनुसार चल करके दुआएं ले रहे हैं, तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में कोई कठिनाई है ही नहीं, बड़ा सहज मार्ग है, सहन वाला मार्ग नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं उसको सहन मार्ग, सही मार्ग को। मुश्किल का अनुभव, मेहनत का अनुभव होता है, हमें तो कभी नहीं लगता है मैं मेहनत या मुश्किल या बहुत कोई गहरा पुरुषार्थ कर रहा हूं, करण कराओ हार बखा रहा है, मन मत ऐड नहीं को, श्रीमत जो कह रहे हो चलते चलो। तो एक परमात्मा की दुआएं और एक हमारी निमित्त दादियां जिनको बाबा ने इस सीट पर रखा, उनकी भी कोई भी बात को मैंने कट नहीं किया, ये करना है हाँ जी मुझे आता या नहीं आता, मैंने ये नहीं कहा दादी मेरे से नहीं होगा, मेरे को पता ही नहीं ये सब। अगर मैंने हाँ जी कर लिया, उनकी दुआएं मिल गई, नहीं आने वाली चीजें वो भी हम सीख गए, कर लिया। जो निमित्त आत्माएं हैं जिनको बाबा ने अपनी सीट पर बिठाया, जिस गद्दी पर बिठाया, मैं हमेशा कहता हूं ये विक्रमादित्य का आसन हमारे निमित्त टीचर्स बहनों को मिला है। जिस सेंटर पर है, भले वो पढ़ी है, इतने अनुभवी नहीं है, नहीं पढ़ी है, कैसी भी हैं, लेकिन बाबा के आसन पर बैठी हैं, इसलिए आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी विद्वान हैं, कितने भी अनुभवी हैं, उस आसन को सम्मान देना आवश्यक है। ये विक्रमादित्य का आसन है, ये मां का आसन है, ये नंबर 1 आत्मा का आसन है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो ये तो छोटी है, इसको पता नहीं है, ये अनुभवी नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो कह रहे हैं आप हाँ जी कर लो, अगर गलत हो जाएगा तो बाबा के तुमने उस भावना से अगर किया है तो। मित्र की बड़ों की दुआएं लेते चले, सब संस्कार अपने आप जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दुआएं हमारे संस्कारों को बदलने में बहुत सहयोग देती हैं, क्योंकि दुआओं के आधार से सहज योग लगता है, और योग अच्छा है तो संस्कार अपने आप चेंज हो जाए। ज्यादा मेहनत नहीं करना, ये संस्कार, इसका मैंने डिटेल बताया, कई लोगों को पता नहीं चलता ये भी मेरा गलत संस्कार है क्या, लेकिन देह में संस्कार है, और उन देह विमान वाले के सूक्ष्म संस्कारों को अगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो कभी कोई। बाबा कई बार हंसी में कहता है कुत्ता जाता बिल्ली जाती चूहा, कहीं से संस्कार इमर्ज होता रहता है, बार बार बाहर आता है, हमारी स्थिति को, हमारे संगठन को तोड़ने का प्रयास करता है। हम सब माया जीत, जगत जीत अगर चाहते हैं, संसार को बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने संस्कारों को चेंज करना बहुत जरूरी है। और वो संस्कार तभी चेंज होंगे जब पहले समझ कि गलत है, फिर महसूसता, और उसके बाद अच्छी तपस्या, दृढ़ता का तपस्या। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या। एक की श्रीमत पर चलना कुछ भी हो जाए, ये तपस्या है। और ऐसी तपस्वी आत्माएं करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कई बातों को समाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ करके अपने उस संस्कार को गलाना है मुझे। ये संकल्प आज आप करेंगे, नया साल शुरू हो रहा है, इस 2020 के चक्कर तो हम सब ने देख लिए, लेकिन 2021 हमारा ब्राह्मणों का अपने लिए और पूरे विश्व पर्यटन के लिए बहुत नंबर वन बने। मैं तो एक बात कहता हूँ, 21वीं सदी का 21वां साल शायद 21 जन्मों का वर्षा दिलाने के निमित्त बन जाएगा। तो इस 21वें साल को हम सब इतना उमंग उत्साह के साथ मनाएं, जो पुराने संस्कार करके समाप्त हो जाएं, और हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, व्यवहारिक जीवन से दिव्य संस्कार, पवित्र संस्कार, दुर्लभ संस्कार झलकने लगे, तो बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। अभी 5 मिनट करेंगे, फिर हमारी पुष्पा दीदी आएंगी, योग की कमेंट्री से योग कराएंगी। आप 8 बजे तक सब योग करें। 5 मिनट के लिए सब अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ जाओ। बाबा ने बड़ा अच्छा आसन दिया है, इस भ्रुकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, लाइट माइट संपन्न होकर के बाबा की किरणों का अनुभव करो। सर्वशक्ति लाइट जैसे ऊपर से ज्ञान सूर्य की आ रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। Thank you.
की मंगल बेला महामिलन की मंगल बेला प्रभु मिलन जग मना रहा वो करुणा दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा सबको समा रहा प्रभु शरण वरदान मिला ईश्वर का वरदान मिला सफल करो और पाओ सफलता सफल करो और पाओ सफलता मुरली मधुर वो सुना रहा सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा आओ